लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन सहायता एजेंसी ने इसराइल द्वारा काबिज फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में युद्ध विराम लागू होने के प्रथम दो सप्ताहों के दौरान 12 लाख लोगों को भोजन पहुंचाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों को रिहा किए जाने पर हुए समझौते का स्वागत किया। उन्होंने सचेत किया कि अब आगामी कदमों के बारे में स्पष्टता से सोचा जाना होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि गाजा पट्टी में पूर्ण युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास जारी रखे जाने होंगे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने बुधवार को न्यूयॉर्क में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ये बहुत जरूरी है कि गाजा में किसी भी प्रकार के जातीय सफाई से बचा जाए।
At its essence, the exercise of the inalienable rights of the Palestinian people is about the right of Palestinians to simply live as human beings in their own lands.
अंतोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि फिलिस्तीनी लोगों के अपरिहार्य अधिकारों से मंतव्य है उन्हें अपनी भूमि पर सामान्य लोगों की तरह रहने का अधिकार। हमने देखा है कि इन अधिकारों को साकार कर पाना हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। हमने एक पूरी आबादी को सुन्न कर देने वाले व्यवस्थागत ढंग से अमानवीयकरण और दुष्टता के रूप में पेश किए जाने का चलन देखा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बुनियाद पर टिके रहना बहुत अहम है। किसी भी तरह के नस्लीय सफाई से बचने के लिए ऐसा किया जाना बेहद जरूरी है। यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने दोहराया कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास द्वारा किए गए हमलों को किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, और जिस तरह से गाजा में पिछले अनेक महीनों के दौरान जो कुछ घटित हुआ है वो किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। करीब 50,000 लोगों की जान गई है, जिनमें 70% महिलाएं व बच्चे हैं। गाजा का अधिकांश सिविल बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि गाजा में अधिकांश आबादी बार बार विस्थापन का शिकार हुई है और भूख व बीमारियों की चपेट में है। एक पीढ़ी बेघर हो चुकी है और गहरे सदमे में है। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में ले सकता है। उन्होंने वहां रह रही फिलिस्तीनी आबादी से गाजा छोड़कर चले जाने के लिए भी कहा था। इस बीच यूएन एजेंसियां गाजा में मानवीय सहायता कार्य जारी रखे हुए हैं और वहां 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद लगभग 10,000 ट्रक मानवीय सहायता पहुंचाई गई है।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मानवतावादी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता पर रोक लगाए जाने पर चिंता जताते हुए वैश्विक सहायता के क्षेत्र में अमेरिका को अपनी अहम भूमिका बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका के नए कार्यकारी आदेश से संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर असर बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 सप्ताह पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने और पेरिस समझौते से कदम पीछे हटाने की घोषणा की थी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपने एक पत्र में जानकारी दी है कि उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से विकास व मानवतावादी गतिविधियों के लिए अपनी सहायता जारी रखने की पुकार लगाई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश के जरिए अगले 3 महीनों के लिए अरबों डॉलर की सहायता धनराशि को रोकने की घोषणा की है, जिससे यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और मानवीय सहायता से जुड़े अन्य कार्यों पर असर होने की आशंका है। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य कार्यकारी आदेश में जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में अमरीकी सदस्यता को समाप्त करने और उसे वित्तीय समर्थन न देने की भी बात कही है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में अमेरिकी सदस्यता की समीक्षा की जाएगी। कार्यकारी आदेश से फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी के कामकाज पर भी असर होगा। इस एजेंसी से वित्तीय समर्थन को वापस ले लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा मानवतावादी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता पर रोक लगाए जाने पर चिंता जताई है और अपील की है कि सहायता और विकास के क्षेत्र में अमेरिका को अपनी अग्रणी भूमिका बरकरार रखनी होगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक अन्य कार्यकारी आदेश के जरिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकारियों पर पाबंदियां थोपी हैं। इसमें आईसीसी अधिकारियों की संपत्तियों को जब्त करने, उन्हें और उनके परिजन को अमेरिका आने से रोकने समेत अन्य प्रावधान हैं।
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के दक्षिण क्षेत्र किवू में M23 विद्रोहियों के बढ़ते प्रभाव के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवीय अधिकारी ने बताया है कि बढ़ती जटिलता और जरूरतें एक ऐसे संकट को बढ़ावा दे रही हैं जिसने पहले से ही 10 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश ने जोर देकर कहा है कि DRC के पूर्वी हिस्से में संकट को समाप्त करने का ये बिल्कुल सही समय है। उन्होंने गुरुवार को सुरक्षा परिषद के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, हम एक निर्णायक क्षण में हैं और शांति के लिए एक साथ एकजुट होने का समय आ गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त ने आगाह किया है कि लोकतांत्रिक गणराज्य में अगर रवांडा समर्थित विद्रोही गुट M23 को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो वहाँ हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC के पूर्वी हिस्से में संकट को तत्काल समाप्त किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। यूएन प्रमुख ने कहा कि हम अन्य सशस्त्र गुटों द्वारा निरंतर खतरे को भी देख रहे हैं, चाहे वो गुट कांगो के हों या विदेशी। इन सब घटनाक्रमों व गतिविधियों का मानवीय नुकसान बहुत ज्यादा है। इस बीच यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। गौरतलब है कि DRC का पूर्वी क्षेत्र खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और दशकों से टकरावों व युद्धों से ग्रस्त रहा है। इस क्षेत्र में कथित रूप में 100 से अधिक सशस्त्र समूह सक्रिय हैं। जनवरी में M23 नामक सशस्त्र गुट और कांगो सरकार के बलों के बीच लड़ाई तेज हो गई थी।
संयुक्त राष्ट्र की बौद्धिक संपदा एजेंसी WIPO ने कहा है कि परिवहन का भविष्य दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट, हवाई टैक्सी और मानवीय सहायता के बिना यानी स्वचालित वाहनों में नजर आ रही है। नई तकनीकों वाले इस यात्रा साधनों से सफर अधिक तेज, साफ और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
वाइपो की रिपोर्ट में कहा गया है कि जल परिवहन में स्वचालित जहाज और स्मार्ट बंदरगाह व धरातल परिवहन में बिजली चालित वाहन, तेज गति की रेल सेवा और स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली के जरिए बदलाव हो रहा है। परिवहन में इस क्रांतिकारी सोच को इस तथ्य से भी बल मिल रहा है कि वैश्विक स्तर पर परिवहन क्षेत्र 1/3 से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इस परिदृश्य ने परिवहन के जलवायु प्रभाव को कम करने वाली टिकाऊ तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित किया है। स्वचालित वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकृति को देखते हुए वाइपो का कहना है कि डिजिटल तकनीक का बढ़ता प्रयोग भी परिवहन में अहम बदलाव ला रहा है। इन वाहनों के प्रयोग से वर्ष 2035 तक $300 अरब से $400 अरब तक का धन मिलने का अनुमान है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
जनहार तेरी महिमा पा।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने गाउडियम एट स्पेस न्यास के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि जयंती वर्ष हम सभी को आशा के तीर्थयात्री बनाता है। उन्होंने निर्धनों के पक्ष में किए जा रहे न्यास के नेक कार्यों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। गाउडियम एट स्पेस द्वितीय वेटिकन महासभा के प्रेरितिक संविधानों में से एक है, जिसका अनुमोदन संत पापा पॉल षष्ठम ने किया था, जबकि गाउडियम एट स्पेस न्यास समस्त विश्व में निर्धनों और दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए सामाजिक और लोकोपकारी परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करता है। यह न्यास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संत पापा ने कहा कि निर्धनों और जरूरतमंदों की मदद कर उक्त न्यास इस प्रेरितिक संविधान के सिद्धांतों पर खरा उतरता तथा सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया की भावना के साथ मेल खाता है, जहां कुरिंथियों और रोमियों को प्रेषित संत पॉल के पत्रों के अनुसार हम सभी यीशु मसीह में एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि कलीसिया के सदस्यों के बीच यह मिलन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से साकार होता है जो प्रेम है और एकजुटता में प्रकट होते हैं, विशेष रूप से उन लोगों में जो सबसे अधिक पीड़ित हैं। संत पापा ने कहा कि मसीह में बने रहना हमें एक परिवार, भाई और समान गरिमा वाला बनाता है और इस परिवार का पोषण रविवारीय ख्रीस्त्याग में एक साथ युक्रिस्त रूपी सामूहिक भोज में सहभागी बनकर होता है। उन्होंने कहा कि हम एक शरीर हैं क्योंकि हम एक ही रोटी खाते हैं। यह वह आध्यात्मिक भोजन है जो सभी को समान रूप से दिया जाता और हमें ईश्वर और भाइयों के साथ एकता में रहने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा की यह शक्ति हमें ईश्वर के प्रेम का साधन बनने की ओर ले जाती है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंचना चाहता है। अस्तु, उन्होंने कहा, इस पवित्र वर्ष में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप उन अनेक लोगों के लिए आशा का कारण हैं जो पीड़ित और हतोत्साहित हैं, जो आपके कार्यों के माध्यम से यह महसूस करते हैं कि ईश्वर उनसे प्रेम करते और उनके दुख में उन्हें सांत्वना प्रदान करते हैं। रोम में 10 से 14 फरवरी तक समस्त सृष्टि के सामान्य हित के लिए प्रणालीगत परिवर्तन हेतु आशा के तीर्थ यात्री शीर्षक से अंतर्राष्ट्रीय सुपीरियर्स जनरल संघ UISG और सुपीरियर्स जनरल संघ USG के न्याय, शांति और सृष्टि की अखंडता नामक JPIC आयोग के धर्म समाजियों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों का कार्य शिविर संपन्न हुआ। आयोग के सहकारी सचिव दिव्य धर्म समाज के पुरोहित फादर रॉय थॉमस ने उक्त कार्य शिविर के उद्देश्य के बारे में कहा कि प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले उक्त कार्य शिविर का एक मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्म समाजों एवं धर्म संघों के नए प्रवर्तकों को प्रेरित करना, उनका परिचय पहले से मौजूद प्रवर्तकों के साथ कराना तथा उनके बीच विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन देना है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों से लगभग 100 धर्म समाजियों, धर्म संघियों और लोक धर्मी विश्वासियों ने अपनी सेवा से संबंधित मुद्दों की अपनी समझ को गहरा किया और अपने अपने कार्य की पद्धति पर चर्चा की। साथ ही नागर समाज और वकालत संस्थाओं के विशेषज्ञों ने भी कार्य शिविर में शिरकत की। वेटिकन न्यूज से बातचीत में फादर थॉमस ने कहा, कई अन्य गैर सरकारी संगठन और कई अन्य नागर संगठन भी हैं जो उन्हीं मुद्दों पर काम कर रहे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने दिलों और हाथों को खोलें, एक दूसरे का हाथ थामें और आगे बढ़ें, क्योंकि यह नेटवर्किंग, वकालत और सहयोग का समय है जिसकी आज हमें नितांत आवश्यकता है। और भारत की सिस्टर ग्रेटा फर्नांडिस ने वेटिकन न्यूज से कहा कि मौजूदा कठिनाइयों के बावजूद उन्हें उम्मीद है कि एक साथ मिलकर काम करने से इन मुद्दों को हल करने के नए तरीके ढूंढे जा सकेंगे। JPIC के प्रवर्तकों के रूप में उन्होंने कहा, हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रेरिताई पर ध्यान केंद्रित करें और वर्तमान नकारात्मक घटनाओं से विचलित न हुए तथा उन लोगों के साथ रहें तथा उनकी आशा बने जो हाशिए पर रहने को मजबूर हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्स और UNAIDS के निदेशक विनी ब्यान नीमा ने सामाजिक विज्ञान संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी द्वारा आयोजित कर सुधार पर उच्च स्तरीय वार्ता के बारे में वैटिकन न्यूज से बातचीत की। गुरुवार को राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दर्जनों अधिकारी वैटिकन में कर न्याय और एकजुटता पर एक उच्च स्तरीय वार्ता के लिए एकत्र हुए थे। सम्मेलन का आयोजन पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस अर्थात सामाजिक विज्ञान संबंधी परम धर्म पीठी अकादमी द्वारा किया गया था। इसमें उन तरीकों पर ध्यान आकर्षित कराया गया जिनसे आज की अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली वैश्विक असमानता को बढ़ावा दे रही है। परम धर्म पीठी अकादमी की अध्यक्षा सिस्टर हेलेन आल्फोर्ड ने वैटिकन न्यूज से कहा, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली 100 साल से भी अधिक पुरानी है और आज की अति वैश्वीकृत दुनिया से निपटने में वास्तव में सक्षम नहीं है। यह बहुराष्ट्रीय निगमों और अत्यधिक धनी व्यक्तियों को बहुत कम दरों का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करती, जिससे सरकारें महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित रह जाती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने कलीसिया की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दर्जनों सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वैटिकन में एकत्र हुए हैं, क्योंकि वे वर्तमान विश्व में कलीसिया और विशेष रूप से संत पापा फ्रांसिस की महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भूमिका को पहचानते हैं। भारत के कोलार गोल्ड फील्ड्स में संत तेरेसा को समर्पित गिरजाघर की पल्ली में बैंगलोर महाधर्म प्रांत की विभिन्न पल्लियों के लीजन ऑफ मैरी सदस्यों ने 11 फरवरी को लूर्द की रानी मरियम के महापर्व के उपलक्ष में एक आध्यात्मिक समारोह में भाग लेकर मां मरियम के प्रति भक्ति की पुनर्पुष्टि की। इस धर्म विधिक समारोह का एक अनूठा आकर्षण धन्य कुंवारी मरियम के विभिन्न स्वरूपों में सुसज्जित 60 से अधिक बच्चों की भागीदारी थी, जो मरियम के विभिन्न स्वरूपों और उपाधियों को दर्शाते रहे थे। शाम की शुरुआत मरियम सेना की प्रार्थना और कलीसियाई जीवन में धन्य माता मरियम की भूमिका पर चिंतन के साथ हुई। लीजन ऑफ मैरीज के युवाओं और बच्चों के नेतृत्व में एक भव्य जुलूस मरियम गुफा की ओर बढ़ा, जहां श्रद्धालु पवित्र ख्रीस्तियाग के लिए एकत्र हुए थे। शाम को मोमबत्ती की रोशनी में रोजरी विनती माला के साथ जुलूस जारी रहा। कोलर गोल्डफील्ड्स डीनरी के अध्यक्ष फादर जेरोम स्टैनिस्लॉस ने इस बात पर जोर दिया कि यह सभा लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण है और जयंती वर्ष 2025 की तीर्थ यात्रा में एक सार्थक कदम है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।